أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. آج کا ہمارا جو درس ہے وہ موجز فی اصول الفقہ میں ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حوزہائے علمیہ خصوصاً پاک و ہند میں اور ایران میں یہ کتاب الموجز یہ پہلی کتاب ہے علم اصول میں جو آج کل پڑھائی جاتی ہے. یہ کتاب الموجز فی اصول الفقہ ان کے مصنف اس کتاب کے جو مصنف ہیں وہ حضرت آیت اللہ جعفر سبحانی حفظہ اللہ ہیں. الموجز فی اصول الفقہ درواقع یہ خلاصہ ہے آغا کی اس کتاب کا جو انہوں نے المفصل کے نام ہے. المفصل فی اصول الفقہ اس کے مقابلے میں ہے الموجز فی اصول الفقہ. مفصل یعنی وہ تفصیلی ابحاث ہیں اس میں علم اصول کی, اور موجز یعنی وہی مختصر. پہلے حوزہ علمیہ نے آغا جعفر سبحانی کو یہ کہا تھا کہ آپ اصول فقہ کے بارے میں کوئی ایسی کتاب تدوین کریں جس کے حساب سے ہم وہ کتاب حوزہ علمیہ میں پڑھائیں بعنوان متن. تو انہوں نے المفصل کتاب لکھی. جیسے حوزہ علمیہ کے پاس وہ کتاب پہنچی انہوں نے کہا کہ یہ کتاب تو بہت تفصیلی ہے, مختصر ہو تو ابتدائی حساب سے مفید رہے گی. تو جعفر سبحانی نے اس کے بعد الموجز فی اصول الفقہ کتاب لکھی. یہ درواقع خلاصہ ہے اس المفصل کا. یہ کتاب جیسا کہ میرا اپنا نظریہ بھی یہی ہے کہ جو روش اور طریقہ کار شہید باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے وہی اپنانا چاہیے تو بہتر ہے, کیونکہ ایک ہی منہج سے ایک ہی طریقے سے اگر انسان سلیبس کو پڑھے گا تو اس کا ذہن بھی ایک جگہ پر مرکوز رہے گا, متمرکز رہے گا, اور اس کو طالب علم کو کیٹیگریز کے حساب سے لیول کے حساب سے وہ چیز سمجھ آئے گی. مثلاً پرائمری کے حساب سے آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو جیسے آپ ہائی اسکول میں جاتے ہیں تو اس سے تھوڑا جو اپ گریڈ کتاب ہوگی وہ پڑھائی جاتی ہے, اور جیسے ہی آپ میٹرک پاس کر لیں گے تو انٹر فرسٹ ایئر میں آپ کو وہ کتاب پڑھائی جائے گی جو اس سے تھوڑا لیول کے حساب سے اوپر ہوگی. یعنی مرحلہ بمرحلہ یہ آپ کا علم تطور کے حساب سے تدریجن بڑھے گا, اس کی لیول آرام آرام سے بڑھائی جائے گی, اور اس میں کوشش یہ کی جائے کہ ابتدا میں جو مطالب بیان کیے جائیں وہ ایسے ہوں جو مفہوم شناسی اور مفردات کے بیان کرنے کے حساب سے ہوں. جیسے شہید باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ نے حلقہ اولا میں یہ کام انجام دیا ہے, اور پھر دوسرے مرحلے میں ان اصطلاحات کو کھولنا, تھوڑا واضح کرنا ان اصطلاحات کو, اور تیسرے مرحلے میں بالکل جو قانونی تفصیلی بحث ہے وہ کی جائے. تو ہمارے یہاں حوزہ علمیہ میں مثلاً پہلے موجز, اس کے بعد اصول مظفر, اور اس کے بعد مثلاً رسائل, پھر کفایہ یا کہیں حلقہ ثالثہ, وہ ایک ہمانگی نہیں رہتی. بولو کہ مفید ہے, علماء ایسے ہی ان کتابوں کو پڑھتے آئے ہیں, لیکن میری ایک نظر ہے کہ انسان اگر پہلے مرحلے میں حلقہ اولا اور دوسرے مرحلے میں حلقہ ثانیہ اور تیسرے مرحلے میں حلقہ ثالثہ پڑھے تو ایک اصول کا بہت اچھا دورہ ہے. اللہ کل حال ہمارے ہاں موجز بعنوان متن اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے, تو اس حساب سے یہ کتاب ایسے نہیں کہ مفید نہ ہو, ماشاءاللہ اس میں سارے مطالب ہیں, اور جو بھی لازم اور ضروری مطلب ہیں, اگر طالب علم, میری نظر یہ ہے کہ इन मतालिब को ही अच्छे नमूने से याद कर ले, जो मूजज़ फ़ी उसूल फ़िक़्ह में अल्लामा जाफ़र सुबहानी हाफिज़हुल्लाह ने बयान किए हैं, अगर इनको ही इंसान अहसन तरीके से, बेहतर तरीके से याद कर ले, मेरे ख्याल में ये एक अच्छा इजमाली दौरा इंसान के लिए हो जाएगा। अगर इन सारे मतालिब को इंसान याद कर ले, हिफ्ज़ कर ले, इन पे तसल्लुत पैदा कर ले, तो बेहतरीन दौरा है मूजज़ का भी। मूजज़ एक इस हिसाब से अच्छी किताब है। बहरहाल ये किताब जो मूजज़ है, इस किताब में एक मुकदमा है और 8 मकसद हैं। सीधी सी बात है, आप जब इंडेक्स देखते हैं किसी भी किताब की या फहरिस्त की, तो उसमें मसलन उस फहरिस्त में लिखा होता है कि इस किताब में कौन सी अबहास बयान की जाएंगी। तो इस किताब में भी एक मुकदमा है और 8 मकसद हैं, और जो मुकदमा है उसके खुद 12 अम्र हैं। वो मुकदमा 12 उमूर पर मुश्तमिल है जिनका जानना ज़रूरी है, अगर वो नहीं जानेगा तो वो मकासिद इंसान को समझ में नहीं आएंगे। इस किताब का जो पहला मकसद है, अल मकसदुल अव्वल से आप जैसे वारिद होंगे, वो बहस अवामिर के बारे में, अलबत्ता मुकदमे की बहस के बाद जो आज हम पढ़ेंगे, मुकदमे की अबहास करने के बाद आप पहले मकसद में जब वारिद होते हैं, तो पहला मकसद जो है वो अवामिर के बारे में, और खुद अवामिर, अमर की जो बहस है, अमर की जमा अवामिर है, उसकी खुद 9 फसलें हैं, उसके ऐसे समझे 9 चैप्टर जो हैं, चैप्टर हैं। दूसरा जो मकसद है वो नवाही के बारे में, उसकी भी 9 फसलें हैं। ये फकत मैं फहरिस्तवार आपके महजर में बयान कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इस किताब में क्या क्या है। और तीसरा जो मकसद है वो मफहूम के बारे में, आपने सुना होगा मफहूम शर्त, मफहूम वस्फ, मफहूम गायत, वही मफाहिम, मफहूम की जमा मफाहिम है, वो तीसरे मकसद में बयान किया जाएगा। उसमें भी 5 अमरे हैं और 3 फसूल हैं, 3 फसलें हैं। चौथा जो मकसद है उसमें आम और ख़ास की बहस है, उमूम और खसूस की बहस है, उसमें भी 8 फसलें हैं। आम किसे कहते हैं, ख़ास किसे कहते हैं, इसके बारे में बहस है। और पांचवा जो मकसद है वो मुतलक और मुकय्यद के बारे में, मुजमल और मुबय्यन के बारे में, उसमें भी तकरीबन 6 फसलें हैं। और मकसद सादिस या मकसद शिशुम वो हुज्जत के बारे में है और अमारात के बारे में है, तकरीबन वो उसमें भी 3 मकामात के हिसाब से आगा गुफ्तगू करते हैं, अल मकामुल अव्वलो, अल मकामु सानी, अल मकामु सालिस, इस अंदाज से बहस करते हैं। और अल मकसदु सबे, मकसद हफ्तम या 7वां जो मकसद है वो उसूल अमलिया के बारे में है। उसूल अमलिया वही एहतियात, तखीर, बरात, इस्तेसहाब, ये उसूल अमलिया के हिसाब से जो और जो उसूल अमलिया हैं इनके बारे में गुफ्तगू की जाएगी, उसमें भी 4 फसलें हैं। और आखिरी जो मकसद है अल मकसदु सामिन, वो अदिल्ला के तआरुज के बारे में है कि अगर मसलन 2 दलीलें हैं, उनका आपस में तआरुज है, उनका आपस में टकराव है, तो उसको कैसे हल किया जाए। तआरुज कौन सा बिलाखरे तसाकुत की माना में है, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे जम किया जाएगा, ये 8वें मकसद में गुफ्तगू होगी। उसमें भी 4 अमर हैं और 2 फसलें हैं। तो ये 8 मकसद हैं इस किताब अल मूजज़ के, एक मुकदमा है। अच्छा, ये अल मुकदमा यानी मुकदमा, ये खुद इसके बारे में मैं अर्ज करूं, इसमें 12 उमूर के बारे में बहस की जाएगी। मुकदमा यानी आप जब ये किताब पढ़ेंगे, इसके इब्तिदा में ही मुकदमा है, ये मुकदमा जो है इसके 12, इस मुकदमे 12 उमूर के बारे में गुफ्तगू की जाएगी। सबसे पहले पहला जो अम्र है वो, जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी इल्म हो उसकी इल्म की तारीफ की जाती है। तो पहले अम्र में, मुकदमे के पहले अम्र, 12 उमूर में से पहले अम्र में इल्म उसूल की तारीफ, इल्म उसूल का मौजू, इल्म उसूल की गायत, इनके बारे में पहले अमर में गुफ्तगू की जाएगी। इल्म उसूल की तारीफ क्या है, इल्म उसूल का मौजू क्या है, इल्म उसूल की गायत क्या है। अच्छा, उसके बाद में जो दूसरा अमर है वो मबाहिस उसूल की तकसीम बंदी है, पार्ट पार्टीशन है, तक्सीम कर रहे हैं कि इल्म उसूल की जो अभास हैं उनको तक्सीम किया जाता है दो अभास में, बहस उसूल लफ्जी, बहस उसूल अकली, मबाहस लफ्जिया और मबाहस अकलिया। अच्छा, तीसरा जो अम्र है मुकद्दमे में वो है वज की हकीकत, वज की अकसाम, वज शख्सी, वज नोई, वज तायिनी, वज तायुनी, खूब इसके बारे में गुफ्तगू होगी तीसरे अम्र में। और चौथा अम्र जो मुकद्दमे में है वो है दलालत के बारे में, कि दलालत तसव्वुरी क्या होती है, दलालत तस्दीकी की क्या डेफिनेशन है, इसके बारे में गुफ्तगू होगी। पांचवा जो अम्र है वो हकीकत और मजाज के बारे में गुफ्तगू है, हकीकत की क्या तारीफ है, मजाज की क्या तारीफ है। और छठे अम्र में हकीकत और मजाज की अलामात कौन सी हैं, कि मसलन इंसान हकीकत और मजाज को पहचानना चाहे तो उसकी कौन सी अलामात हैं, वो गुफ्तगू होगी इस मुकदमे के छठे नंबर अम्र में। सातवां जो अम्र है अम्र सादिस, वो उसूल लफ्जिया के बारे में गुफ्तगू है, उसूल लफ्जिया जो इंसान उसूल फिक्र में इस्तेमाल करता है उसमें से एक उसूल लफ्जिया है, उसूल लफ्जिया किसे कहते हैं और क्या है, और असालत मसलन कौन सी मुराद है वहां पर। आठवां अम्र इश्तराक, तरादुफ, और इनके बारे में क्या मुमकिन है या वाक़ हो सकते हैं नहीं हो सकते, इसके बारे में गुफ्तगू होगी। और नवा जो अम्र है जो बहुत अहम बहस है, एक लफ्ज़ को आप कई मानी में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कई मानाओं में इस्तेमाल एक लफ्ज़ को इंसान कर सकता है या नहीं कर सकता, इसके बारे में नवे अम्र में गुफ्तगू की जाएगी। दसवें अम्र में हकीकत शरिया और मुतशर्रिया किसे कहा जाता है और उसका फ़ायदा क्या है, अगर वो हम गुफ्तगू करें तो उसका क्या समरा क्या है। ग्यारहवां जो है वो ये अस्मा इबादत, ये सलात, ये सौम, ये सही के लिए वजह किए गए हैं या सही और या आम के लिए वजह किए गए हैं, यानी फासिद और सही दोनों को। मसलन इंसान अगर गलत नमाज भी पढ़े उसको नमाज कहा जाएगा नहीं कहा जाएगा, उसको सलात कहा जाएगा नहीं कहा जाएगा, इस हिसाब से। बहरहाल ये ग्यारहवें नंबर में बहस होगी। और बारहवां जो अम्र है इस मुकदमे का आखिरी जो इनवान और अम्र है वो है मुश्तक की हकीकत, मुश्तक किसे कहते हैं और उसमें आया उसूल का क्या फ़ायदा है, क्यों बहस करते हैं मुश्तक के बारे में, उसके बारे में बारहवें अम्र में हम गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, आते हैं हम पहले अम्र की तरफ। पहले अम्र में इल्म उसूल की तारीफ है, जैसे मैंने बयान किया इल्म उसूल का मौजू है, इल्म उसूल की गायत है, मकसद है। तारीफ व इल्म उसूल, मौजू व इल्म उसूल व गायत व इल्म उसूल, इन तीन चार चीज़ों के बारे में अम्र अव्वल में गुफ्तगू होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि उलमाए कदीम जो कुदमा हैं, जब वो किताब लिखते थे तो उनकी किताब लिखने का तरीक़ाकार ये होता था कि जब भी किसी इल्म के बारे में गुफ्तगू करते थे तो रूस समानिया के बारे में गुफ्तगू करते थे। तो एक इजमाली खाका जिन ख़ास बुनियादों पर वो इल्म मौकूफ़ होता है, वो बुनियादी होती हैं उस इल्म की, तारीफ, मौजू, गायत, मसलन ये जो चीज़ें होती हैं आठ, उनको बयान करते थे। और बयान करना ज़रूरी भी है, पता तो चले बिलाकर इस इल्म की बुनियादें किस चीज़ पर हैं या कौन सी बुनियादें हैं, यानी एक इजमाली उस इल्म के बारे में तारुफ बयान करते थे। और उसके बाद उस इल्म की अहमियत, मसलन अभी हम इल्म उसूल पढ़ रहे हैं या इल्म फिक्र अगर हम पढ़ें तो इनको पढ़ने का, इनको दर्क करने का, इनको समझने का क्या फ़ायदा है, इसके बारे में उलमा गुफ्तगू करते थे। तो इस हिसाब से तीन चीज़ें हम रूह से समानियाँ सबको तो बयान नहीं करते, तीन चीज़ें बिलाखिर ज़रूरी हैं, उनका बयान करना नागुज़ीर है। एक तो इल्म की तारीफ, इल्म की क्या तारीफ है, यानी वो इल्म जो आप पढ़ रहे हैं, उसूल पढ़ रहे हैं, फिक्र पढ़ रहे हैं, नहव पढ़ रहे हैं, सर्फ मीर पढ़ रहे हैं, जो भी कोई भी मौजू पढ़ रहे हैं, बलागत, जो भी इल्म आप पढ़ रहे हैं, रिजाल पढ़ रहे हैं, नहव पढ़ रहे हैं, उसूल पढ़ रहे हैं, उस इल्म की तारीफ करें, उसकी डेफिनेशन करें, इस इल्म की क्या तारीफ है। अच्छा, उस इल्म का मौजू बयान करें कि मसलन इस इल्म में हम इन मसाइल के बारे में गुफ्तगू करेंगे कि ये जो मसाइल हैं, ये सारे मसाइल, इनकी महवरियत ये चीज है। मसलन जैसे नव में आप कहते हैं मौजू अल कलिमतु वल कलाम, इल्म नव का मौजू, आप सारे मसाइल, ये मरफूआत, ये मनसूबात, ये फाइल मरफू होता है, मुब्तदा खबर मरफू है, मसलन इन का ऐसे मनसूब होता है, ये सारे जो मसाइल वहां पर मतलब करते हैं, इन सारे मसाइल जो महवरियत है वो कलमा और कलाम है। तो बिलाखिर हर इल्म का क्या होता है, मौजू होता है, उस मौजू के इर्द गिर्द सारे मसाइल तवाफ कर रहे होते हैं, उस दायरे में ही होते हैं, यानी वो इनवान जो दिया जाता है वो सारे मसाइल जो है उस इनवान के इर्द गिर्द रहे होते हैं। तो मौजू ऐसा हो जो जामे हो, और जो मसाइल उस इल्म में मतरह होंगे वो उस हिसाब से ऐसे ना हो कि मौजू एक हो और आप मसाइल कोई दूसरे बयान कर रहे हैं, उनके मौजू ना शुद्धि के। अच्छा, तीसरी जो बहस की जाती है किसी इल्म की इब्तिदा में पढ़ने से पहले, उस इल्म का फायदा, मैं जो ये इल्म उसूल पढ़ रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मैं जो अपना इतना वक्त सर्फ कर रहा हूं खास करके हौजा इल्मिया में, ये उसूल फिक्र और मुजज और रसायल किफाया हलकात, ये सारे उलूम पर, सारी किताबें ये इल्म उसूल के बारे में, और उसके बाद दरस खारिज में भी इंसान अगर वक्त मिले तो 7-8 साल उसमें सर्फ कर देता है इल्म उसूल में, तो बिलाखर इस इल्म उसूल का मुझे क्या फायदा होगा। तो इब्तिदा में इन तीन उमूर के बारे में गुफ्तगु जरूर होती है, जो भी इल्म आप पढ़ेंगे इन उमूर के बारे में गुफ्तगु होनी ही है, नागुजीर है, उस इल्म की तारीफ, उस इल्म का मौजू और मौजू क्या है, और उस इल्म के पढ़ने का फायदा और समरा क्या है। अच्छा, इस इल्म में यानी इस किताब में इल्म की फिर गुफ्तगू, इल्म की बहस करेंगे तो वो वसीदर हो जाएगी। हमारे हाथ में जो अभी किताब है वो है मुजस फी उसूल फिक्र, इन्होंने भी इन तीन उमूर के बारे में गुफ्तगू की है, यानी इल्म उसूल फिक्र की तारीफ और इल्म उसूल फिक्र का मौजू, इल्म उसूल फिक्र का फायदा, पढ़ने का क्या फायदा है, कौन से मसाइल मेरे हल होंगे, कौन सी मेरी मुश्किलात और मुअज़लात ये इल्म उसूल हल करेगा, कहां कहां मुझे फायदा देगा। अच्छा, अब देखें हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, इल्म उसूल फिक्र, उसूलुल फिक्र, दुरुस्त, अल मुजज़ु फी उसूलिल फिक्र है, उसूलिल फिक्र, उसूल मुज़ाफ़, फिक्र मुज़ाफ़िल है। ये उसूल फिक्र ये मुरक्कब है कलमा उसूल और फिक्र से, दुरुस्त। अच्छा, ये जब हम कहते हैं उसूल फिक्र तो सीधी सी बात है फिक्र का भी मुझे पता हो, फिक्र किसे कहते हैं, जो उसूल फिक्र जो आप कह रहे हैं तो फिक्र का भी पता हो ना मुझे, उसका भी इल्म होना मेरे लिए जरूरी है, उसका भी मैं आलिम हूं कि फिक्र किसे कहा जाता है, उसकी डेफिनेशन भी होगी, ताकि अगर एक तरकीब में से एक जुज की आप तारीफ करेंगे, एक जुज की डेफिनेशन करेंगे, दूसरे की नहीं करेंगे तो आप तारीफ क्या हो जाएगी, अधूरी रह जाएगी। तो बिलाकर उन मुफरदात को, उन मफाहिम को आप बिलाकर जाने, उनकी मारिफत जरूरी है। उसूलुल फिक्र जब कहा जाता है तो उसूल की मारिफत हो तो फिक्र की भी मारिफत हो कि फिक्र किसे कहा जाता है, उसूल किसे कहा जाता है। अच्छा, तो हम उसूल से पहले, क्योंकि हमारा मौजू है ही उसूल फिक्र, तो उसको उसके बारे में बाद में वारिद होते हैं, पहले फिक्र के बारे में जानते हैं कि उसूलुल फिक्र यानी फिक्र के जो उसूल और कवानीन हैं, तो ये फिक्र है क्या, सबसे पहले फिक्र की तारीफ करें हम, जिसके उसूल और कवानीन बयान किए जा रहे हैं, तो पहले फिक्र के बारे में हम जाने कि ये खुद फिक्र है क्या। अच्छा, फिक्र जो है लुगत में अल फिक्र हो फिल लुगत अल फहम, फिक लुगत में फहम को कहते हैं, समझने को, अल्फिक यानी समझना, फहम, ये फिक का लुगवी माना है। जैसे सूरह तौबा की आयत नंबर 122, वलौला नफर मिन कुल फिरकतिन मिनहुम ताइफा लियतफक्कहू फिद्दीन, लियतफक्कहू फिद्दीन। लियतफक्कहू का मादा, जैसे कि आप जानते हैं सब, ये फिक वाला मादा है, और यहां पर वही फिक्ह लुगवी मुराद है, तफक्कुह दीन में, यानी दीन के बारे में समझ बूझ, दीन की मारिफत। अच्छा, अलबत्ता यहां पर जो फिक्ह है मसलन वो सारा दीन के बारे में समझना, वो मसाइल एतकादी भी हो गए, फुरुआत भी हो गए, उसूल दीन भी हो गए, सारे मसाइल का समझना जरूरी है। एक इलाके में से, एक मंतके में से कोई कुछ अफराद आए जो दीन में तफक्कुह करें, दीन की समझ बूझ और मारिफत हासिल करें, और फिर वापस जाएं अपने इलाके में, उन लोगों को समझाएं और मारिफ से आगाह करें। खूब, यहां ले तफक्कुह वही फिक्ह, फिक्ह यानी वही समझना, मारिफत दीन, दीन का समझना, उसमें सब शामिल है। ये फिक्ह ही हिसाब से मैंने माना किया, लेकिन उलमाए जो है इल्म उसूल, इल्म फिक्ह की जो तारीफ करते हैं, या उलमाए फिक्ह या फकीह जिसे कहें आप, जो इस फन में माहिर हैं, वो हकीकत में जो इल्म फिक्ह की तारीफ करते हैं वो लंबी चौड़ी में नहीं यहां पर बयान करना चाहता, कि इन कील और कुल तो के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे सारा, इसके बारे में चार पांच जलसे और दुरुस लग जाएंगे। देखें, फिक्ह वही अहकाम शरी का इल्म है, फिक्ह यानी अहकाम शरी का इल्म, और हलाल और हराम को जानना, ये बिल्कुल इजमाली तारीफ है। अहकाम शरी का इल्म और हलाल और हराम को जानना। अच्छा, ये अलमूजज में जो तारीफ की गई है फिक्ह की, वो ही ऐनन वही तारीफ है जो साहिब मालिम ने किताब मालिमुद्दीन में जिक्र की है, तो कहीं और जगह ढूंढने की जरूरत नहीं, वही मालिमुद्दीन तारीफ आगा जाफर सुभानी ने यहां पर किए। अच्छा, क्या तारीफ किए? हुवल इल्म बिल अहकाम शरीयत अल फरिया अन अदिल्लतिह तफसीलिया, यानी इल्म है अहकाम शरिया का, फिक्ह से कहते हैं इल्म, अहकाम शरिया फरिया का तफसीली दलाल के साथ हो, यानि शराई फराई ये कयूदात हैं, क्योंकि जो भी आप तारीफ पढ़ते हैं, जो भी तारीफ होती है किसी इल्म की, उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जो कैदें इस्तेमाल होती हैं, जो कयूद इस्तेमाल होती हैं, वो कयूद एहतराजी होती है, यानि वो कैद जो उस इल्म के की डेफिनेशन में तारीफ में इस्तेमाल हुई है, यानि वो कैद दरवा के उस कैद से हम किसी चीज को खारिज कर रहे होते हैं, एतराज कर रहे होते हैं कि ये इस इल्म में है दूसरे में नहीं है। अगर फरिया कहा तो इससे क्या खारिज हुआ, कौन सी चीज दाखिल हुई, तफसीलिया कहा तो कौन दाखिल हुआ, कौन खारिज हुआ, शरिया कहा तो इससे क्या मुराद है। खूब, ये हम इल्म फिक्ह में अभी के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो यहां पर कहा हुवल इल्म बिल अहकाम शरिया, इल्म फिक्ह अहकाम शरिया का इल्म है। अच्छा, तो इस हिसाब से जो गैर अहकाम शरीय हैं, जैसे अहकाम अक्ल हैं, अक्लियात हैं, उलूम तबी हैं, उलूम रियाजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हो ये हमारी बहस से खारिज हैं। बस इल्म फिक्ह में उन उलूम, उन अहकाम के बारे में गुफ्तगू होगी क्या जो शरई होंगे, शरी अहकाम के बारे में गुफ्तगू होगी, बाकी जो गैर अहकाम शरीय हैं जैसे मसलन अकलियात, उलूम तबी, उलूम रियाजी, इनके बारे में हम गुफ्तगू नहीं करेंगे। अच्छा, ये बिल अहकाम शरिया से मुरादी है। अहकाम शरिया खुद उसकी दो किस्में हैं, आप जब कोई शरीयत की किताब उठाएंगे उसकी दो किस्में, एक है उसूल अकायद और दूसरे हैं क्या, दस्तूरात अमली। खूब, वो जो अमली हिसाब से हमें अहकाम जो हमें बताए गए हैं वो, यानी अहकाम और अकायद आसान लफ्जों में, खुद शरीयत, अहकाम शरीयत दो उसकी किस्में हैं, एक उसूल दीन, उसूल अकायद, और दूसरे दस्तूरात अमली। अच्छा, यानी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरा क्या वजीफा है अमली, खुदावंद मुताल ने मुझ पर क्या वाजिब करार दिया है, कौन सी चीजें मेरे लिए हराम है, कौन सी मकरूह है, कौन सी मुबाह है, ये यानी। अच्छा, अहकाम शरई भी दो किस्म के, ये हो गया इल्म बिल अहकाम शरईया, अहकाम शरईया से कौन खारिज हुआ ये हमने बयान किया। फिर कैद आई है इस तारीफ में अल फरियतो, अल फरियतो में यहां पर दरवा के इस चीज को बयान किया जा रहा है कि फिक्ह इस्तिलाही जिसके बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो फकत दस्तूरात अमली के बारे में गुफ्तगू है, फकत अहकाम के बारे में गुफ्तगू है। अच्छा, यानी अहकाम में शरिया तक उसूल अकायद भी शामिल थे, लेकिन जैसे ही फरिया कहा तो यहां पर फकत दस्तूरात अमली, बायद और नबायद, क्या करना है क्या नहीं करना, उसूल अकायद और उसूल दिन यहां से खारिज हो गए। अच्छा, उसूल अकायद फिर वहां उनकी बहस जो है, यानी अकीदे की बहस जो है वो इस फिक्र में उसकी गुफ्तगु नहीं की, हालांकि उसको फिक्र अकबर भी कहा जाता है, लेकिन इस फिक्र में, फिक्र मुस्तला में उनकी बहस नहीं की जाती, बल्कि उन आभास को उलूम के हिसाब से इल्म कलाम इल्म फलसफा में गुफ्तगु की जाती है कि खुदावंद मुताल के बारे में कैसा अकीदा होना चाहिए, तौहीद क्या है, तवस्सुल क्या है, शिर्क क्या है, खूब नबूवत के बारे में हमारा क्या अकीदा है, इमामत के बारे में क्या अकीदा है, उस पर क्या अदिल्ला है, ये गुफ्तगु कहाँ पर होगी, इल्म कलाम में, इल्म फिक्र में इसकी गुफ्तगु नहीं होगी, इल्म कलाम वही फिक्र अकबर है। लेकिन यहां पर जो फिक्र जब बहस होगी इल्म इस्तिलाही हिसाब से वो बायद और नबायद, क्या करना है क्या नहीं करना, यानी अहकाम के बारे में गुफ्तगु है, किसी दूसरी चीज की गुफ्तगु नहीं है। अच्छा, तीसरा जो नुक्ता जरूरी है समझना वो ये है कि ये जो तारीफ की गई है हुवल इल्म बिल अहकाम शरीयत अल फरिया, ये भी दरवाके इस हिसाब से जो अदिल्लत तफसीलिया कहा गया है, अदिल्लत तफसीलिया क्यों कहा गया, अहकाम शरिया का इल्म तो मुझे हो फिक में, फरिया का क्योंकि ताकि वो उसूल अकायद वगैरह निकल जाए, ये अदिल्ले तफसीलिया का लफ्ज क्यों आया, इस पर तवज्जो कीजिएगा। देखें, इंसान या तो दरजे इज्तिहाद तक पहुंच जाए, खुद अहकाम को हासिल करने की तवानाई इस्तेदाद उसमें आ जाए, उसे कहते हैं क्या, मुज्तहिद। इंसान में जब खुद सलाहियत आ जाए कि वो खुद हुक्म शरी को अखज कर सकता है इन रिवायात से, कुरान से, उन उसलूब के साथ जो कवानीन मौजूद हैं, कुदरत इस्तिंबात इंसान को हासिल हो जाए अहकाम दीन को हासिल करने के हिसाब से, मनाबे और मुतून दीनी से, तो इस हिसाब से वो अपना मसला समझ सकता है और अगर मर्जे बन जाए तो फतवा सादिर कर सकता है। लेकिन इंसान अगर मुज्तहिद नहीं है, ये तो मुज्तहिद है, मुज्तहिद इस मकाम तक पहुंच गया, लेकिन जो इंसान मुज्तहिद नहीं है, दरजे इज्तिहाद तक नहीं पहुंचा, बल्कि वो क्या है, मुकल्लिद है, तकलीद करने वाला है। अब जो तकलीद करने वाला है वो अपने वज़ाइफ़े अमली को, अपने बायद और नबायद को, वाजिब और मुस्तहब और हराम को जो अंजाम देगा वो दस्तूर मुज्तहिद से अंजाम देगा, कि मुज्तहिद कहेगा कि ये काम जो है ये वाजिब है, इसको ऐसे अंजाम देना चाहिए, इसको ऐसे अंजाम देना चाहिए, वो अपनी तरफ से कोई चीज नहीं करेगा। वो मर्जे, वो आलिम, हल यस्तविल्लज़ीन यालमून वल्लज़ीन ला यालमून, आलिम जिसने इन मराहिल को तय किया है और उस मसले शरई को उसने अख्ज किया है, इस्तिंबात किया है, उसकी तरफ रुजू करेगा। मुकलिद का काम यही है कि मर्जे की तरफ और मुज्तहिद की तरफ रुजू करेगा। अच्छा, ये मर्जे तकलीद उसने तो खुद पढ़ा है और मसले तक पहुंचा है, लेकिन ये जो मुकलिद है ये उसकी क्या करेगा, तकलीद करेगा। अच्छा, ये फिक्र इस्तिलाही जो है, जो अभी फिक्र इस्तिलाही की जो हमने तारीफ की, अन अदिल्लत तफसीलिया, यानी हुवल इल्म बिल अहकाम शरईयत अल फरिया, अन अदिल्लत तफसीलिया, ये मुकल्लिद को शामिल नहीं है, ये इल्म फिक्र मुकल्लिद को शामिल नहीं है। क्यों, کیونکہ یہ مقلد اگرچہ احکام شرعی پر عمل کرتا ہے، دستورات دینی پر عمل کرتا ہے، باید و نباید پر عمل کرتا ہے، لیکن وہ اس کا یہ علم فقہ نہیں ہے، وہ فقی نہیں ہے، اس کو آپ فقی نہیں کہیں گے، اس کو آپ مجتہد نہیں کہیں گے۔ فقہ یعنی احکام شرعی کا علم از روی دلیل، ان دلیل، یعنی یہ جو میں نے حکم صادر کیا دلیل کے ساتھ، اقام برہان کے ساتھ، یہ ہے علم فقہ۔ مقلد تو ایسے نہیں کرتا، مقلد فقط عمل کرتا ہے کہ مجتہد نے ایسے کہا ہے، وہ ان چیزوں کو جانتا نہیں ہے، وہ فقط جانتا ہے کہ مجتہد نے مجھے حکم کیا ہے، اس کے پاس احکام شریعہ کے اخذ کرنے کے لیے دلائل اور برہان براہین نہیں ہوتے۔ تو اس حساب سے ان ادلت تفصیلیہ کی قید سے ہم نے فرض مجتہد کو تو اس تعریف میں شامل کر دیا جس میں قدرت استنباط و احکام ہے، لیکن وہ مقلد جو ہے اس ادلہ تفصیلیہ کی قید سے نکل جائے گا، کیونکہ اس کے بعد تفصیل نہیں ہوتی، وہ فقط جانتا ہے کہ یہ چیز واجب ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز مکروہ ہے، لیکن مجتہد جانتا ہے کہ یہ چیز واجب کیوں ہے، اس کے کون سے مراحل ہیں، کہاں سے میں نے مسئلے کو اخذ کیا، قرآن سے، سنت سے، یہ سارے مراحل، تفصیلی اس کے پاس علم ہوتا ہے، لیکن مقلد کے پاس تفصیلی علم نہیں ہوتا۔ تو لہذا یہ جو تعریف ہے حل فقہ والعلم بالاحکام الشرعیت الفریع عن ادلۃ التفصیلہ، اس کا مطلب یہی ہے، ایک ایک لفظ ہم نے واضح کیا کہ علم بالاحکام سے کیا مراد ہے، پھر شریعہ کہہ کے ایک مسئلہ علم ریاضیات ان چیزوں کو نکال دیا، اور فرعیہ کہہ کے مثلاً علم عقائد اور ان چیزوں کو نکال دیا، ان ادلۃ التفصیلہ کہہ کے مجتہد کو تو شامل کیا جو استنباط کرنا چاہتا ہے، ان کو خارج کر دیا جو مقلد ہیں۔ تو لہذا یہ چیز ضروری تھی جس کو بیان کرنا آپ کے محضر میں، ہم نے واجب و لازم سمجھا، ایک ایک لفظ کے بارے میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے کہ یہ لفظ کیوں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ یہ دأب علماء رہا ہے کہ جب بھی کوئی تعریف کرتے ہیں اس تعریف میں وہ قیودات اور الفاظ استعمال کرتے ہیں جو بالآخر وہ الفاظ عکاسی کر رہے ہوتے ہیں اس علم کی، اس علم کے بارے میں ہی گفتگو، دوسرے علوم اس سے نکل جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس کتاب کی ابتدا میں دیکھیں گے کہ یہ کتاب ہے، یہ علم اب نظر آ رہے الموجز فی الفقہ، یہ کتاب جو ہے اس کی فہرست ہے، اور فہرست کے بعد یہ مقدمے کے 12 امر ہیں، یہ پڑھیں گے، ان کی کوئی عبارت کی تطبیق ضروری نہیں ہے، 12 امر ہیں، وہ 8 مقاصد ہیں، ان کے بارے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آتے ہیں امر اول کی طرف، یہ جو 2 لائنیں ہم نے پڑھی ہیں اس کی فقط وضاحت کر کے آج کا درس یہیں پر تمام کرتے ہیں۔ الامر الاول تعریف و علم الاصول، امر میں جیسے بیان کیا کہ مقدمے میں 12 امر ہیں، اس میں پہلا امر علم اصول کی تعریف کے بارے میں ہے، اور موضوع کے بارے میں ہے، و غایت کے بارے میں ہے، موضوع اور غایت کے بارے میں۔ ان لفظۃ اصول الفقہ تشتمل علی کلمتین، یہ لفظ اصول فقہ 2 کلموں پر مشتمل ہے، تدلان علی ان ہنا اصولا و قواعد یتقی الفقہ علیہا، یہ دونوں کلمے، دونوں لفظ دلالت کرتے ہیں کہ یہاں پر کچھ اصول اور قواعد ہیں جن پر فقہ تقیہ کرتی ہے، جن پر فقہ اعتماد کرتی ہے، فقہ کا اعتماد ہے ان اصول اور قواعد پر۔ فلا بد من تعریف الفقہ اولا، یہ فقہ کے جو اصول اور قواعد ہیں، یہ فقہ کے اصول و قواعد ہیں، تو مجھے یہ تو پتا ہو کہ فقہ کسے کہتے ہیں جس کے میں اصول یہاں پر بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہہ رہے ہیں فلا بد من تعریف الفقہ اولا، بس ضروری ہے کہ ہم فقہ کی پہلے تعریف کریں، ثم تعریف و اصول ہی ثانیا، پہلے ہم فقہ کی تعریف کریں، اس کے بعد ہم اس فقہ کے اصول کے بارے میں تعریف کریں، یعنی پہلے فقہ علم فقہ کی تعریف، اس کے بعد علم اصول فقہ کی تعریف۔ اچھا، الفقه على ما هو المعروف في تعريفه هو العلم بالاحكام الشرعيه الفرعيه عن ادله التفصيليه. فقہ جیسے کہتے ہیں معروف ہے, اس کی جو تعریف کے حساب سے جو معروف ہے وہ یہ ہے کہ علم بالاحکام الشرعیہ, یہ فقہ علم ہے احکام شرعیہ کا, احکام شرعیہ جو فرعیہ ہیں ان ادلت التفصیلیہ تفصیلی دلائل کے ساتھ. فخرج بقید الشرعیہ العقلیہ, جیسے ہم نے بیان کیا شرعیہ کی قید سے خارج کیا کس کو, علوم عقلی کو, علوم عقلی سے یہاں پر بحث نہیں ہوگی, اور فرعیہ کی قید سے خارج کیا گیا کس سے, اعتقادی مسائل کو. خوب, مسائل اصولیہ کو خارج کیا. اچھا, وبالتفصیلیت, جب تفصیلی آگے قید لگائی اس سے خارج کیا کس کو, علم مقلد بالاحکام, وہ عالم جو احکام کا عالم ہے فقط کہ مثلا یہ چیز واجب ہے یہ چیز حرام ہے, اس کو خارج کیا, یعنی مقلد کے بارے میں یہاں گفتگو نہیں ہوگی, مقلد اس تعریف میں شامل نہیں ہے. فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالْأَحْكَامِ, یہ اگرچہ احکام کا عالم ہے, یہ مقلد جانتا ہے کون سی چیز واجب ہے کون سی مستحب ہے, لَكِنَّهُ لَا عَنْ دَلِيلٍ تَفْصِيلِ, جانتا ہے لیکن تفصیلی دلیل اس مقلد کے پاس نہیں ہے. بتبع دلیل اجمالی, بلکہ دلیل اجمالی کے حساب سے وہ جانتا ہے, وہ حجیت الرائے المجتہد فی حقی, اتنا جانتا ہے اجمالی حساب سے اتنا جانتا ہے کہ مجتہد جو میرے بارے میں بیان کر رہا ہے اس کی رائے میرے لیے حجت ہے, فی حق ہی یعنی فی حق المکلف یا فی حق المقلد, مقلد اتنا جانتا ہے علم اجمالی سے کہ یہ مجتہد نے میرے لیے احکام یہ بیان کی ہیں, توضیح المسائل یا رسال عملیہ جو لکھا ہے, یہ اس کا کہنا میرے لیے کیا ہے, ضروری ہے اس پر عمل کرنا جو انہوں نے فتوا صادر کی. وَأَمَّا الْمُجْتَهِدُ فَهُوَ عَالِمٌ بِكُلِّ حُكْمٍ عَنْ دَلِيلٍ خَاصٍ, تو فرق کیا ہوا مجتہد کا اس عام مقلد سے, فرق یہ ہے کہ مجتہد فَهُوَ عَالِمٌ, وہ عالم ہوتا ہے بِكُلِّ حُكْمٍ, ہر حکم سے عَنْ دَلِيلٍ خَاصٍ, ہر حکم کا عالم ہوگا بِدَلِيلِ الْخَاصِ, لَا بدلیل مثلا اتباعی او طبعی او اجمالی, یعنی جو مقلد ہے اس کے پاس دلیل اجمالی ہے, علم اجمالی ہے, دلیل تفصیلی نہیں ہے اس کے پاس, وہ اتنا جانتا ہے کہ مجتہد کی بات ماننا میرے لیے ضروری ہے, لیکن جو مجتہد ہوتا ہے اس کے پاس ہر علم کے ہر بات کے لیے ہر مسئلے کے لیے کیا ہوتی ہے, دلیل خاص ہوتی ہے. تو اس حساب سے یہ علم فقہی تعریف ہم نے بیان کی, اور انشاءاللہ کل سے ہم بیان کریں گے کہ اصول کی کیا تعریف ہے, اصول کا موضوع کیا ہے, غایت اصول کیا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.